ओम शांति। हम सभी बाबा के सच्चे धारणा मूरत ब्राह्मण बच्चे हैं और हमारा ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे माता पिता शिक्षक सद्गुरु बन हमें रूहानी पालना देते हैं। लेकिन फिर भी हम सब चाहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में कुछ नवीनता हो, तो ब्राह्मण जीवन में नवीनता कैसे हो, इस टॉपिक पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। हमारे बीच में हैं डॉक्टर सचिन भाई, जो बाबा के बगीचे के रूहे गुलाब है, लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा, तीव्र पुरुषार्थी है। इनका ज्ञान का मनन चिंतन मंथन उच्च कोटि का है। तो ऐसे बाबा के प्यारे लाडले सचिन भाई जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और आप अभी हमें ब्राह्मण जीवन में नवीनता कैसे हो इस विषय पर बताएंगे।
ओम शांति। किसी जंगल में एक महात्मा का आश्रम था और उस महात्मा के आश्रम में महात्मा जी के अतिरिक्त उनके कई सारे शिष्य थे। एक दिन अचानक एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा खेलते खेलते आश्रम को साता है। उस महात्मा जी को वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है और उसको दूध और थोड़ी रोटी देते हैं और धीरे ही धीरे 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 वो बच्चा बहुत प्रिय बन जाता है। परंतु एक समस्या वहां खड़ी होती है। जब भी महात्मा जी ध्यान में बैठते हैं तो वो बिल्ली का बच्चा कभी कंधों पर, तो कभी पैरों में, तो कभी सिर पर चढ़ जाता है। तो महात्मा जी अपने शिष्य को आदेश देते हैं कि जब भी मैं ध्यान में बैठूं, इस बिल्ली के बच्चे को सामने जो झाड़ है उसमें टंगा देना। और हुआ वैसे ही। फिर उसके बाद उन्हें कभी कोई समस्या नहीं आई। कालांतर में ये जो महंत थे, महात्मा जी थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर उनका ही एक योग्य शिष्य उस आश्रम का प्रमुख बना। तो जब ये महात्मा जी ध्यान पे बैठते थे तो नियमानुसार सभी शिष्य उस समय एक घंटे के लिए उस बिल्ली के बच्चे को झाड़ में टांग देते थे। परंतु कुछ समय के बाद और एक आश्चर्य हुआ। ये जो बिल्ली का बच्चा था एक दिन मर गया। तो शिष्यों ने सभा बुलाई, मीटिंग, कि अब क्या किया जाए। तो सबने यह निर्णय किया कि बाजार से एक नई बिल्ली लाई जाए। और जब भी ये महात्मा जो थे ध्यान में बैठते थे तो फिर बिल्ली को टांग देते थे। ऐसी बहुत सी बिल्ली आई और गई और मर गई। इस महात्मा के बाद और बहुत से महात्मा आए, उस मठ के प्रमुख बने और चल बसे एक के बाद एक। परंतु जो नियम बना हुआ था, जो कि पहले महात्मा ने बनाया था, वो नियम अब भी चालू था। कौन सा नियम? बिल्ली को झाड़ पर बांधने का। पूछा गया, ऐसा क्यों करते हो? तो क्या उत्तर दिया होगा? ये तो परंपरा से चालू है। क्या हमारे पूर्वज क्या मूर्ख थे? तो जब भी जो भी महात्मा आता था, मठ का प्रमुख बनता था और जब भी ध्यान में बैठता था तो नियम क्या बन गया था, बिल्ली को झाड़ पर टांगने का। ऐसी ही कितनी सारी बिल्लियां हम आत्माओं ने भी अपने मन में, अपने चित्त में टांग रखी है। पुरानी बातों की बिल्लियां, पुराने स्वभाव की बिल्लियां, पुराने कर्मों की बिल्लियां, पुराने स्वभाव संस्कारों की बिल्लियां क्यों बांध रखी है? क्योंकि परंपरा से आदत सी बन गई है। अब उस आदत को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी ऐसी ही बिल्लियां बांधी थी और वही वर्षा हमने लिया है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हर एक ब्राह्मण अपने साथ बहुत सी पुरानी बातें, ऐसी कुछ कुछ भक्ति की धारणाएं जो कि छूट चुकी थी परंतु पूरी तरह नहीं छूटी, अब भी अपने मन में पाले हुए है। पुरानी हुई हुई बातें, कोई संस्कार, और उसका पालन पोषण कर रहा है, उससे छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उसको पूर्णतः से स्वीकार कर लिया है मन ने कि वो जरूरी है। इस ब्राह्मण जीवन में, या कहो मनुष्य जीवन में, यदि नया न आए और पुराने में ही व्यक्ति रहे तो जीवन नीरस हो जाता है। पुराने के ही पीछे जीवन में वो उमंग, वो उत्साह कहीं खो जाता है, वही दिनचर्या, परंतु उसमें उमंग उत्साह नहीं, हर चीज में भारीपन है। जैसे युग पाच है, सतयुग सृष्टि का आदिकाल, जहां पर सभी आत्माएं संपूर्ण पावन, 16 कला संपूर्ण रहती है, फिर त्रेता, थोड़ी कलाएं कम होती है, फिर द्वापर, जहां पर देहभान की प्रवेशता होती है, कलाएं और गिरती है, भक्ति का आरंभ होता है, शास्त्र लिखे जाते हैं, तीर्थ यात्राएं की जाती है, नए नए धर्मों की स्थापना होती है, और फिर पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार का युग कलयुग, और कलयुग के बाद संगम युग। इस सृष्टि के जैसे ये पांच युग है, संभवतः इस ब्राह्मण जीवन के भी ऐसे ही पांच युग हो सकते हैं। अनंत काल से भक्ति करने के बाद आत्मा को जब भगवान मिल जाता है तो क्या होता है, बचपन के वो दिन कैसे होते हैं? इस ब्राह्मण जीवन का सतयुग, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, आज की मुरली का गीत है। सब कुछ वाह वाह, ये बहने तो जैसे कि मंदिरों में पूजे जाने वाली जो देवियां थी वही है, ये ब्राह्मण परिवार ऐसा परिवार आहा, और इस संसार में ऐसा परिवार कहीं नहीं। खुशियों की नई बहार, नया उमंग उत्साह, जैसे भगवान के आ गया जीवन में सब कुछ आ गया। वो बारिश जब आती है तब प्रकृति बदलती है, जब भगवान आता है तो संस्कृति बदलती है, इस जीवन की भी संस्कृति बदल जाती है। ऐसा वो उमंग उत्साह का काल, वह आदिकाल, वह बचपन का युग, जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, इतनी खुशी में आत्मा उछलती है, दौड़ती है, भागती है, क्या पुरुषार्थ करूं और क्या नहीं करूं, ऐसे संकल्प उसके मन में आते, क्या सेवा करूं और क्या नहीं करूं, किस किस को जाकर बाप का परिचय अभी के अभी ना दे दूं, ऐसा उमंग उत्साह। जैसे हम बाप के बने हैं, एक एक को बाप के बना देंगे, ऐसा उमंग उत्साह, ऐसा ऐसी सेवा की उमंग। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा उमंग कम होता है। पहले नशा था, भगवान बढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा नशा कम, एक दूसरे को देखना आरंभ करते हैं। पवित्रता भी है, परंतु कलाएं थोड़ी कम हुई। वहां इस ब्राह्मण जीवन का क्या चालू होता है, त्रेता युग, और कुछ समय के बाद फिर ज्ञान में चलने के बाद फिर और बहुत कुछ देखना चालू हो जाता है। दूसरों की कमियां दिखाई देने लगती है, कमजोरियां दिखाई देने लगती है, और जो पहले दिखाई दे रहा था वो अब नहीं दिखाई देता है। वहां से क्या चालू होता है, फिर भक्ति मार्ग चालू होता है। अब तक जीवन में कोई कंप्लेंट नहीं थी, यहां से प्रार्थना का युग चालू होता है, फिर यहां पे प्रार्थना चालू होती है। अपने बड़ों के पास जा जाकर प्रार्थनाएं करते हैं ना, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सेवा ठीक नहीं है, ये भाई ठीक नहीं है, ये बहन ठीक नहीं है, ये सेंटर ठीक नहीं है। तो भक्ति में भी क्या करते हैं, पुकारते हैं ना इसी तरह से, और तीर्थ यात्राएं करते हैं, फिर यहां से वहां, वहां से यहां, हाँ जिसके पास कल उसके पास, और पत्र भी लिखते हैं बहुत सारे, शास्त्र बाबा को तो लिखते ही है, पर और दूसरी दूसरी जगह भी लिखते हैं बहुत सारे पत्र। क्यों लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दुख प्रवेश हुआ है। जैसे पहले था, हमको तो कोर्स में बताया नहीं था किसी ने कि ये सब भी होने वाला है, हमने तो अच्छे से कोर्स कर लिया था चुपचाप, तब तो किसी ने नहीं बताया था कि सारे हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुप्तू होने हैं। बताया था किसी ने कोर्स के समय, तो किसी ने नहीं बताया था। बीमारियां आएगी ब्राह्मणों के द्वारा पेपर्स आएंगे, प्रकृति के पेपर आएंगे, हर प्रकार के पेपर आएंगे, और सबसे बड़ा पेपर तो अपने ही संस्कारों के कारण आएगा। जो छिपे हुए संस्कार थे विकारों के, वो भी बाहर निकल आएंगे। सोचा भी ना था कि ऐसा भी होगा, जो जो सोचा नहीं था वो होगा। और फिर दुख बढ़ता जाता है, और आत्मा एक समय, एक ऐसे समय पर पहुंचती है कि वहां पर पुरुषार्थ खो जाता है, नाम मात्र पुरुषार्थ रह जाता है, नाम मात्र अमृत वेला रह जाता है, और नाम मात्र मुरली रह जाती है, और ये वस्त्र और ये वैच, और वो सेवा तो कर रहे परंतु सेवा में वह जुनून, वह जोश, वह खुमारी, वह नशा कहां चला गया पता ही नहीं चला। ब्राह्मण जीवन की इस यात्रा में चलते चलते ब्राह्मण न मालूम कहां खो जाता है। सोचा नहीं था कि माया इस तरह भी आएगी। 7 दिन के कोर्स में यह बताया नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस। बाबा ने कहा है आज की मुरली में ही, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो तुम नहीं जानते हो, तुम हरेक चीज को जान गए हो। मुरलियों में तो सुना था, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसे ऐसे पेपर आए, उन उन आत्माओं से आए, ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने आके खड़ी हुई कि सोचा भी नहीं था ऐसा भी होगा। सोचा था हम तो माया जीत बन चुके हैं। ऐसा वो नशा था तब सतयुग में, क्या बताए, क्या उसका वर्णन करे। भगवान क्या मिला, सब कुछ मिल गया था, और सब भी वैसे ही लगते थे भक्ति में मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ज्ञान में इन निर्गुण हारों में, इस ब्राह्मण परिवार के महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव कुल की महान आत्माओं में बहुत कम गुण दिखाई देते हैं। जो उधर था वो इधर भी दिखाई देने लगा है। कलयुग आरंभ हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, चारों ओर पुरुषार्थ का अंधकार, रोशनी नहीं है कोई। परंतु इस जीवन ने बहुत कुछ सिखा तो दिया, और मधुबन में आ जाना, इस महान भूमि में प्रवेश करना, इस तीर्थ में आ जाना, अर्थात किस युग का आरंभ है ये? संगम में संगम का आरंभ, इस संगम में संगम की शुरुआत, जहां पर फिर से वह नया जोश अब स्वयं में धारण करना है। माया से हार हुई, काम ने हराया, क्रोध ने हराया, लोभ ने हराया, अहंकार ने हराया, परंतु हार कर अब अनुभवी बन चुके हैं। बाल अभी भी सिर पे है, कंघी पहले मिली है थोड़ी, नहीं तो कहा जाता है एक्सपीरियंस इज लाइक अ कॉम विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। जब पूरे ही बाल चले जाते हैं तब अनुभव रूपी कंघी मिलती है, परंतु हमारे अभी बहुत बाल है और समय भी है। तो संगम के इस संगम पर, संगम के इस संगम पर, इस संसार की सर्व महान भूमि पर, इस संसार की सर्व महान आत्माओं का, सभी मधुबन की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से, स्वयं को फिर से उसी उमंग उत्साह में लाने के लिए एक ये अवसर है, और सभी की तरफ से स्वागत भी है। जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं आज, वो है ब्राह्मण जीवन में नवीनता। नवीनता, नूतनता, नयापन। पुराना जो होता है वो रसहीन हो जाता है। जब तक जीवन में नवीनता ना आए, तब तक जीवन का वो सौंदर्य, जीवन का वो नृत्य और जीवन का वो गीत हमें आनंदित नहीं कर सकता। एक नई शुरुआत की आवश्यकता है इस जीवन में। कल की मुरली जो अव्यक्तवाणी है, बाबा ने उसमें कहा है, ये नवयुग है, इस नवयुग में तुम्हारा सब कुछ नया है, कुछ भी पुराना नहीं है। तुम्हारी नई सोच है, तुम्हारे नए संकल्प है, तुम्हारी दृष्टि नई है, तुम्हारी वृत्ति नई है, तुम्हारा देखना नया, तुम्हारा चलना नया, तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी तात नहीं, हर बात नहीं है तुम्हारी, पुराना कुछ भी नहीं है। और बाबा ने कल की ही मुरली में फास्ट पुरुषार्थ की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। ऐसी परिभाषा शायद ही किसी मुरली में है, जो कल की 81 की मुरली जो है उसमें है। फास्ट पुरुषार्थ और नंबर वन पुरुषार्थियों को बाबा ने परिभाषित किया है। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात जो स्थिति एक सेकंड पहले थी, एक सेकंड बाद, उससे आगे हो पीछे नहीं, इसे कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। और नंबर वन पुरुषार्थ की भी परिभाषा बाबा ने दी, नंबर वन पुरुषार्थी अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड चढ़ती कला, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला से विश्व का कल्याण होना है। इतनी स्वयं के ऊपर जिम्मेवारी समझो। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है, भगवान वाच, ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है आगे बढ़ना और दूसरों को आगे बढ़ाना। तो जब नया शब्द हम प्रयोग करते हैं, नवीनता शब्द जब सामने आता है आंखों के, तो चार बातें हम सोच सकते हैं इसमें। नवीनता शब्द के चार अर्थ, सबसे पहले नवीनता का अर्थ नवीनता, न्यूनेस शब्दशः। दूसरा अर्थ जो बीत गया उसको भूल जाना, जो पुराना है उसको समाप्त कर देना, जो अतीत है उससे अपना तादात्म्य तोड़ देना। तीसरा अर्थ रचनात्मकता, तीसरा अर्थ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, और चौथा अर्थ जो सामने आता है वो है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस विषय की चर्चा हम इन चार शब्दों के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहला शब्द कौन सा था? नवीनता अर्थात नवीनता, नवीनता अर्थात सब कुछ नूतन, सब कुछ नया, सब कुछ अभिनव, जो कि कल की ही मुरली में बाबा कह रहे हैं तुम्हारी हर बात नई हो, कुछ भी पुराना न हो। और ब्राह्मण जन्म होते ही, क्योंकि ये युग ही नया है, बाबा ने यहां हमारा सब कुछ नया कर दिया है, ये जीवन ही नया है, पुराना सब कुछ समाप्त हो गया है। तो किस किस बात में नवीनता? सबसे पहले तो दृष्टि। कल की मुरली में बाबा ने कहा पहले देहभान की दृष्टि थी, पहले देह को देखते थे, अब किसको देखते हो? आत्मा को देखते हो। हम भी ब्रह्मा कुमारी और तुम भी ब्रह्मा कुमार, आज की मुरली में है ना, क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकता, भाई भाई की दृष्टि। सबसे पहला परिवर्तन बाबा ने आकर यह कर दिया, उस संबंध को ही चेंज कर दिया, क्योंकि उस संबंध में विकार की संभावना है। बाबा ने कह दिया तुम सभी एक तो आत्माएं हो या फिर भाई और बहन हो, और कोई संबंध तुम्हारा हो ही नहीं सकता। दूसरा संबंध बनाने का प्रयत्न भी मत करना। यदि किसी को विशेष भाई भी बनाओ उसमें भी माया है, यदि किसी को विशेष बहन भी बना दो उसमें भी माया है, यदि किसी को अपना गुरु भी बना दो उसमें भी माया है, किसी को अपनी अलौकिक मां भी बना दो, अलौकिक मां एक ही है, किसी को अपनी अलौकिक मां भी बना दो, किसी को उसके नाम के बजाय किसी और नाम से पुकारो उसमें भी माया है, निकनेम। जहां जहां घनिष्ठता फैमिलियरिटी आएगी माया वहां पर प्रवेश करेगी, चाहे वो कितना ही ऊंचा, कितना ही संबंध, बड़ा संबंध हो, परंतु माया वहां प्रवेश कर सकती है, क्योंकि दोष ना तो ब्रह्मा कुमार का है और ना ही ब्रह्मा कुमारी का है, दोष उम्र का है। वासनाएं उम्र को नहीं देखती, काम रूप को नहीं देखता, काम विशेषताओं को नहीं देखता, वासनाएं वैसे ही आक्रमण करती है बिना कुछ देखे, चाहे कितना भी कोई पवित्र हो और कितनी ही पवित्रता की धारणा हो और कितनी ही यज्ञ में सेवा की हो और कितना ही तन मन धन से स्वयं को यहां पर निसार किया हो, किसी न किसी रूप में, आज कहा ना चारों ओर से माया बार करती है, आज की मुरली में प्रश्न है चारों ओर से। तो दृष्टि हमेशा आत्मिक, संपर्क पहले देह का था, अभी आत्मिक, शुभ भावना और शुभ कामना से सबके संपर्क में आते हो, इसके लिए रिलेशनशिप जो है उसको आत्मिक ही रखना, और कुछ बनाने की सोचना अर्थात माया को अवसर देना। पहला परिवर्तन बाबा ने आकर कर दिया दृष्टि। संकल्प का परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन है संकल्प और भावनाएं। इसको मन, बुद्धि और संस्कार कहो, या अलग अलग रीति से इसको विभाजित हम कर सकते हैं विषय को। तो दूसरा है संकल्पों का। संकल्प जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी उतनी ही स्थिति श्रेष्ठ होगी। अपनी स्मृति को निरंतर ऊपर रखना। जैसे ही स्मृति नीचे जाएगी स्थिति भी नीचे जाएगी, जैसे ही संकल्प नीचे आएंगे स्थिति भी नीचे आएगी। इसके लिए अपने संकल्प को निरंतर ऊंचा रखना। तो संकल्प, भावनाएं, तीसरा जो परिवर्तन है वो है बोल का, जिसमें कल भी बाबा ने कहा भाषा का परिवर्तन। तुम जो भाषा बोलते हो दुनिया में ऐसी भाषा कोई नहीं बोल सकता। इसके लिए हर एक ब्राह्मण को यह चेक करना है कि हमारी जो भाषा हो वो रूहानी हो, अलौकिक हो। उस भाषा में मैं नहीं हूं। मैंने ये किया, मैंने वो किया। कल की मुरली, शिव बाबा कितना निरहंकारी है। अगर कोई कहे हम ऐसी ऐसी सेवा करते हैं और अहंकार में आते हैं तो क्या कहेंगे। बाप इतनी सारी सेवा करते हैं, ब्रह्मा बाबा का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनके मुख से कभी निकला कि मैंने ये किया। हम कुछ कर ही नहीं रहे, ईश्वरीय शक्तियों द्वारा यहां सब कुछ हो रहा है। संगम पर जो भी सेवाएं हो रही है वो सभी ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा हो रहा है। इसमें हमारा तो भाग्य है, हम केवल निमित्त बन रहे हैं। इसके लिए बोल का परिवर्तन, भाषा का परिवर्तन, दृष्टि, संकल्प, बोल, संबंधों में परिवर्तन, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हमारे संबंध कैसे हो, रूहानी, आत्मिक, देहभान की गंध ना हो उसमें, फैमिलियरिटी ना हो, ये पता ही ना चले कि यह हमारी मां है या लौकिक पिताजी है या लौकिक बहन है या क्या है। सबके प्रति समान, और वो है भी इस परिवार में। उसी को मेंटेन करके रखना है, उसी दिव्य, उसी रूहानी, उसी आत्मिक दृष्टि से अपने लौकिक के जो लोग हैं, आत्माएं हैं, उन सबको उसी दृष्टि से देखना। तो ये कुछ परिवर्तन है। तो सबसे पहला है न्यूनेस। हमारी सुबह नहीं हो, हमारी रात नहीं हो, हमारा अमृत वेला नया हो और हमारा नुमा श्याम का योग नया हो, हमारी ज्ञान, हमारा ज्ञान नया है, हमारा योग भी नया हो, सब कुछ नया ही नया हो, नया ही नया हो, पुराना कुछ भी नहीं। उसके लिए स्वयं को उतनी शक्ति और उतनी नव ऊर्जा से भरना होगा। एक ही जैसा अमृत वेला हमेशा ना चालू, हर दिन का योग नया, हर दिन की मुरली, एक है सुनना, एक है लिखना, एक है पढ़ना, ये तीन तो करते हैं, एक चौथा आयाम है उसके ऊपर चिंतन करना, वो भी नया। केवल सुनना, लिखना, पढ़ना, यहां तक हमारा ज्ञान सीमित ना हो, परंतु कैसा हो, चिंतन करके, मनन करके, हर दिन एक नई डिश, एक डिवाइन किचन खोलो, जिसमें कि क्या करना है, हर दिन एक नई डिश बनानी है ज्ञान और योग की। इस डिवाइन, अपने जीवन को ही डिवाइन लेबोरेटरी या डिवाइन किचन बना दो, कि जिसमें हम हर दिन मुरली से इंग्रेडिएंट्स ले, सामग्री ले और उसकी कोई एक अच्छी सी डिश बनाए, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। जितना श्रेष्ठ हमारा चिंतन होगा उतनी ही श्रेष्ठ हमारी स्थिति होगी। तो ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, सेवा में नवीनता, सेवा के नए नए प्लान्स। ऐसा न समझो कि जितनी सेवा करनी थी कर ली, जिन्होंने सेवा के जितने प्लान बनाने थे बना लिए, अभी भी बहुत सारे प्लान अनटच्ड, अनटैप्ड है, बहुत सारी सेवाएं अभी भी बाकी है। बहुत सारी ऐसी आइडियाज है जो आज तक किसी ने अब भी सोची नहीं है। जितना ही हमारा मन स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, सेवा की नई नई प्लानिंग्स, नई नई टचिंग्स उसमें आएगी। सेवा केंद्र पर क्या क्या नया किया जा सकता है, कौन कौन सी सेवाओं की नई नई विधियां है, विधि और सिद्धि आज की मुरली में कहा ना बाबा ने, देहभान को त्यागो तो ये मिल जाएगा, विधि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। तो सेवा की नवीनता, योग की नवीनता, दिव्य गुण जो है उनको किस तरह धारण किया जाए। सुन तो रहे कितने समय से कि दिव्य गुणों को धारण करो, दिव्य गुणों को धारण करे, कैसे धारण करे उसका वर्कशॉप करो, क्या करे जो ये धारणा में आ जाए, क्या करे कि पवित्रता की धारणा हमारे रेशे रेशे में समा जाए, रोआ रोआ पवित्रता की धारणा से भर जाए, कैसे उन दिव्य गुणों को इस जीवन में भर दे, क्या करे उसके लिए। ऐसी नवीनता हमें अपने जीवन में लानी है। हर चीज नया, आंख खुलते ही नया संकल्प, हर दिन एक नया समान की ड्रेस पहनो, ड्रेस नई, हमारे शूज भी नए हर दिन, एंजेलिक शूज, फरिश्ते के शूज हर दिन नए, बैच भी नया, ड्रेस भी नया, सोच भी नई, विश्वास भी नया, संकल्प भी नए, स्वप्न भी नए, कल्पनाएं भी नए, भावनाएं भी नई, उमंग भी नया, उत्साह भी नया, वही जोश भी नया, वही जुनून भी नया, सब कुछ नव, नव ऊर्जा इस प्राणों में संचारित हो, क्या करे उसके लिए स्वयं ही सोचो तो स्वयं ही पता चलेगा कि ये करना है। जीवन को नवीनता से भरना है, वही पुराने मार्ग पर नहीं चलते रहना है, नया लाओ उसमें, क्या हम नया करें। और सबसे श्रेष्ठ भूमि यह मधुबन है, यहां बैठकर अब ये सोचो कि वहां जाने के बाद क्या नवीनता लानी है, अपने संबंधों में क्या नवीनता लानी है, अपने घर में क्या नवीनता लानी है, अपने ऑफिस में क्या नवीनता लानी है, अपने सेवा केंद्र में क्या नवीनता लानी है, कौन से ऐसे प्लानिंग बनाए कि जिससे सेवा तीव्र गति से आगे बढ़ जाए, ऐसी कौन सी प्लानिंग बनाए कि जीवन ही परिवर्तन हो जाए, उसके बारे में भी प्लानिंग करनी है। तो पहला था नवीनता, न्यूनेस, नूतनता, एक अभिनव जीवन बन जाए हमारा, वही पुराना अपना रहे। दूसरा पॉइंट था जो बीत चुका है, हरेक के जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई है, कभी हार हुई है, कभी जीत हुई है, कभी विकारों ने हमें पराजित किया है, परंतु महानता इसमें ही है जब जब हम गिरे फिर से उठे और इस यात्रा को आरंभ करें। कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है इस जीवन में, कभी भी थकना नहीं है। थक जाना अर्थात किसकी निशानी है, कल की मुरली, देहभान की निशानी है, देह अभिमान की निशानी है, रात के राही थक नहीं जाना है, कितनी बार भी अगर हार हो गई है फिर उठ के चलना है, यही महानता है। तो जीवन में जो बातें हो चुकी अब उनसे नाता समाप्त, क्या सारा जीवन उन्हीं बातों की पश्चाताप करने में गंवाना है। तीन प्रकार की माफी तो हम मांग लेते हैं, एक तो माफी बाबा से मांगते हैं, दूसरी माफी आत्माओं से मांगते हैं, तीसरी माफी आत्माओं को माफ करते हैं, और एक चौथा कार्य है जो अमृत वेले करना है, वो है कौन सा, स्वयं को माफ कर देना। कितनी ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने जीवन में ऐसी भूल कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी पर हो गई, विकारों के अधीन होकर उस क्षण वो संकल्प आया, वो ऐसा वेग था वासनाओं का कि चित्त पराजित हो गया, विवश हो गया और कुछ कर ना सके, वो आवेग इतना तीव्र था सुनामी की तरह कि मुख से ऐसे शब्द निकल गए, क्रोध प्रकट हुआ, आत्मा घायल हुई, संबंध टूट गए, बहुत बनाने के प्रयत्न किए परंतु क्रैक अभी भी है, अब भी अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, अपराध भाव, आत्मग्लानी का भाव अब भी है छिपा हुआ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में, सबसे पहली एक जो माफी है, स्वयं स्वयं को माफ कर दो। दूसरी आत्माओं को तो कर रहे हैं, दूसरों से माफी मांगना, बाबा से माफी मांगना वो तो है ही, और एक चीज जो करनी है वो कौन सी, स्वयं स्वयं को माफी मांग कर दो। कभी बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि पश्चाताप करने में अपना आप समय नहीं गवाओ, ये समय पश्चाताप करने का भी नहीं है, आत्मग्लानि से बाहर निकलो। नो मोर सेल्फ विक्टिमाइजेशन, विक्टिम प्ले से बाहर निकलना है। एक बहुत सुंदर कविता है जो हमें बहुत प्रिय है, हरिवंश राय बच्चन की गाई हुई लिखी हुई ये कविता है। वो कहते हैं कि आकाश से तारे गिरते हैं परंतु आकाश कभी रोता नहीं, मधुबन के आंगन से फूल मुरझाते हैं परंतु मधुबन व बगीचा कभी रोता नहीं है। मदिरालय जो है, मदिरालय बार मधुशाला महखाना, वहां पे वो मधु के जो प्याले होते वो टूटते हैं परंतु जो वहां पीने आते हैं वो कभी दुख नहीं करते। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, आनंद अर्थात चेहरा, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, किसके कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया सो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलिया, मुरझाई कितनी वल्लरिया, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते, कितने मिट्टी में मिल जाते, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते, लघु जीवन लेकर आए प्याले टूटा ही करते, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है, जो मादकता के मारे है, ऐसे जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते। जिनको नशा चढ़ा हुआ है वो कभी मदिरालय जाना छोड़ते हैं क्या, वो नहीं छोड़ेंगे। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर है, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो हम भी कौन है ऐसे मतवाले, ऐसे पियक्कड़ों की ये टोली है, ऐसे मतवालों की ये मंडली है, ऐसे आरूहानी नशा हमने है, तो हम क्यों किसी बात पर शोक करे, पछताए चिल्लाए, जो हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप। कहानी में दिखाते हैं, सबने सुनी है, दो बौद्ध भिक्षुक किसी नदी को पार करते रहते हैं, एक जवान है एक बूढ़ा है बहुत अनुभवी, तो वो जो दो बौद्ध भिक्षुक वहां से जाते रहते हैं तो देखते हैं एक युवती एक तरुणी एक स्त्री वहां खड़ी है जो जा नहीं सकती, उसको डर लग रहा है, तो जो बड़ा वाला रहता है वो तो आगे निकल जाता है बिना देखे, क्योंकि नियम ही ऐसे बने हैं, परंतु जो युवा सन्यासी होता है वो उसकी मदद करता है, उसको तो चलते नहीं आता है, डर लगता है, पानी कंधों तक था, तो उसको पकड़कर लेके आता है। और जब जो बूढ़ा वाला वृद्ध सन्यासी है पीछे मुड़कर देखता है तो क्या होता है, क्रोध से भर जाता है, इतना क्रोध उसको आता है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। उस और उतरते हैं नदी के, और वो जो स्त्री है उसको छोड़ देता है वो युवा सन्यासी, और दोनों सन्यासी चलने लगते हैं। जब आश्रम पहुंचते हैं तो जो बूढ़ा होता है इतना क्रोध से भर जाता है कि तुमने हिम्मत कैसे की ऐसे करने की, क्यों तुमने उसको स्पर्श किया, क्यों तुमने उसको उठाया और लेके गए, क्या तुमको इस आश्रम के नियम पता नहीं, तो वो क्या कहता है, मैंने तो उसे वहीं छोड़ दिया, आप उसे अब तक लिए हुए हो। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड हर, व्हाई यू आर स्टिल कैरिंग हर। मैंने तो छोड़ दिया, तुम उसे क्यों कैरी कर रहे हो। जीवन में जो बातें आई है उनमें प्रवाह है, आई और गई, आई और गई। हमने उसे पकड़ रखा है और जितना जोर से हम पकड़ते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। तो अभी अगले 3 मिनटों में अपने जीवन में जो घटनाएं हुई है, एक नजर तीव्र गति से उन सभी घटनाओं पर दौड़ाए और अपने आप को क्षमा कर दे, अपने आप को माफ कर दे। बाबा को सामने रखकर एक संकल्प ले कि आज से यह जीवन नया। कुछ बातों की चर्चा 5-10 मिनट और करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। किसी एक राजकुमार को इतना वैराग आ जाता है एक बार कि सब कुछ छोड़ देता है और वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो संस्थापक है उनके पास चला जाता है और कहता है मुझे संन्यास लेना है, मुझे दीक्षा दीजिए, और वो संन्यस्त हो जाता है। महावीर जो थे वो निर्वस्त्र संपूर्ण त्यागी तपस्वी अपनी सन्यासियों की टोलियों के साथ यहां से वहां और वहां से वहां घूमते थे। ये जो नव दीक्षित नव संन्यस्त सन्यासी था राजकुमार, कुछ दिन तो ठीक चला पर फिर जब नीचे जमीन पर सोना पड़ता था बहुत पीड़ा होती थी उसे। और इस देश में सन्यासियों के सबसे बड़े शत्रु कौन रहे हैं? मच्छर। और सारी रात मच्छर काटते थे और ठंड और वस्त्र नहीं, बहुत परेशान होता था, बहुत परेशान होता था। इसी तरह यहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, कभी भूखे रहना पड़ता था। सोचा नहीं था उसने कि इतना कठिन ये मार्ग होगा। रात में एक बार सोचता है कि कल सुबह तो यहां से अब भाग जाऊंगा, बहुत हो गया, ये मच्छर मुझे जीने नहीं देते, जहां जाता हूं वहां ये मच्छर एक पल नहीं जीने देते, और बाकी सन्यासी देखो आराम से सो रहे हैं। सोचता ही है, प्लानिंग बनाता ही है, योजना बनाता है कि कल सुबह यहां से भाग जाऊंगा, बहुत हो गया ये सन्यास, वो राज्य ही ठीक था, ये मेरे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो आधी रात को उसी समय महावीर उनके पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं। वो कहते कुछ तो हुआ। वो उनको सीधी बात बता देते हैं कि ये मेरे मन में संकल्प आ रहा है। जैन धर्म में एक क्रिया है जिसे कहा जाता है जाति स्मरण। जाति स्मरण में पूर्व जन्म को याद किया जाता है या किसी साधक को सम्यक को आज पूर्व जन्म में क्या हुआ था याद दिलाया जा सकता है। तो महावीर जी उसे याद दिलाते हैं कि ये तुम्हारी तीसरी बारी है, दिस इज योर थर्ड टाइम। ऐसे ही तुमने 2 बार संन्यास लिया था, तब तुम ऐसे ही संकल्प करके भाग गए थे, तो मैं तुम्हें अभी वो विधि सिखाता हूं। और वो रात उसको विधि सिखाते हैं, कहते कल सुबह तक इसका अभ्यास करो जाति स्मरण की उस विधि का। तो वो सन्यासी रात भर बैठकर विधि का पालन करता है और उसे दिखता है पूर्व जन्म में 2 बार ऐसा ही संन्यास लिया था, ऐसा ही भटका था, और जब कुछ दिनों के बाद ही ऐसे ही वापस भाग गया था। और फिर उसी गृहस्थ, आज की मुरली में कहा ना वही विकारी गृहस्थ आश्रम, आज की मुरली में शब्द है एक विकारी गृहस्थ आश्रम, उसी विकारी गृहस्थ आश्रम में फंस गया था। अब नहीं फंसूंगा, 2 बार तो फंस गया। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को तो शादी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, आज की उंगली में है। और फिर सुबह उसके चेहरे पे वही तेज आ जाता है और वो महावीर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये गलती बहुत बार हो चुकी, अब नहीं करूंगा। पास्ट को याद अगर करना ही है तो किस लिए याद करो, जो गलतियां की है अब नहीं करेंगे। कल की मुरली फास्ट पुरुषार्थी, अर्थात 1 सेकंड पहले जो स्थिति थी 1 सेकंड बाद वह नहीं उससे आगे। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात हर संकल्प नया, हर सेकंड नया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कार्य है आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना। उसके बाद में तीसरा बिंदु है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ ये नहीं कि सभी कवि बन जाए, और सभी पोएट बन जाए और सभी पेंटर बन जाए या वो कार्य करे जो आज तक किसने किया ही नहीं। सृजनात्मकता का केवल ये अर्थ नहीं है। हम कैसे बने क्रिएटिव, मतलब कुछ तो आर्टिस्ट बन जाए, ये नहीं है। क्रिएटिविटी बहुत गहरा शब्द है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता अर्थ जो भी कार्य हम करें वो इतनी तल्लीनता से करें, इतने प्रेम से करें, इतने आनंद से करें, इतने पूरा उसमें मन लगा कर करें, ये क्रिएटिविटी है। कुछ पेंटिंग बना देना नहीं, जीवन को ही पेंटिंग बना देना। कोई कविता लिखना ही रचनात्मकता नहीं है, जीवन को ही कविता बना देना, यह रचनात्मकता है। तो अपने विचारों में रचनात्मकता, ये सोच सोच कर कि मेरे पास तो कोई आइडियाज है ही नहीं, मैं क्या करूं, क्या चिंतन करूं, जिसको करना था उन्होंने तो कर दिया, कौन सी किताब लिखूं, जिन्होंने लिखनी थी वो तो लिख दी, अब किस पर बोलूं, जिस पर बोलना था सारे क्लासेस तो हो चुके हैं, क्या सेवा में नवीनता लाऊं, हजारों सेवा हो चुकी है, अभी क्या रहा ही नहीं है कुछ सेवा में नवीनता, सब हो चुका है जिसको करना था, महारथी ऐसे ही थोड़ी बैठे, मैं क्या करूं, ये हीन भावना है, ये देहभान है, हीनता है, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंडता। हमें रचनात्मक बनना, अर्थात जो भी कार्य करो, छोटा बड़ा कैसा भी कार्य हो, वो इतने अहोभाव से, इतनी कृतज्ञता से, इतनी तल्लीनता से, इतने प्रेम से, खुशी से, आनंद से झूमते हुए कि वही रचनात्मक हो जाए, दैट इज क्रिएटिविटी। सो डू नॉट बी अनहैप्पी फॉर बीइंग अनक्रिएटिव। एवरी वन इज क्रिएटिव, हरेक आत्मा अलग है, सब में नई आइडियाज है, वो आएगी, केवल जो कचरा भरा है उसको पहले खाली करो। एक और अंतिम जो पॉइंट है वो है परिवर्तन। सबसे पहला था न्यूनेस, दूसरा था पास्ट, और तीसरा था रचनात्मकता, और चौथा है, चौथा परिवर्तन, स्वयं को बदलना, उसमें लग जाना। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, वो एक ऐसी वाक्य, ऐसी एक बात उसने कही है, लिख लेने जैसी है, अपने मन पर छाप दो इस बात को जो उसने बात कही है। वो कहता है कि यदि मैं 3 दिन अभ्यास नहीं करता हूं, 3 दिन, संगीतज्ञ बहुत प्रसिद्ध, जग भर में प्रसिद्ध, वो कहता है कि मैं यदि 3 दिन अभ्यास नहीं करता हूं तो मेरी जो ऑडियंस, श्रोता है, उनको समझ में आ जाता है कि मैंने 3 दिन अभ्यास नहीं किया है। जब मैं 2 दिन अभ्यास नहीं करता हूं संगीत का, तो जो संगीत के विशेषज्ञ है उनको समझ में आ जाता है इसने साधना 2 दिन नहीं की है। जब मैं 1 दिन अभ्यास नहीं करता हूं तो मेरे जो शिष्य है, शागिर्द, चेले, उनको पता पड़ जाता है कि मैंने साधना नहीं की। परंतु मेरी अपनी बात अगर बताऊं, यदि मैं 1 पल भी साधना नहीं करता हूं तो मुझे पता चल जाता है, मेरा दिल खाने लगता है, मुझे उठता हूं सुबह तो वो ताजगी नहीं रहती, खोया खोया सा रहता हूं, उदासी सी छाई हुई रहती है। ऐसी संगीत के प्रति उसकी लगन, तो क्या ऐसी ही लगन हमें अपने परिवर्तन के प्रति है? वो बेचैनी, वो व्याकुलता, वो रेस्टलेसनेस, वो अनरेस्ट, डिवाइन अनरेस्ट हमारे चित्त में भी हो। बाबा आया है ना आज की मुरली में, कहा ना, वो बेहद का बापूजी है। वो जो बापूजी थे उनका था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत से अंग्रेजों को निकालने का, यहां तो सारे विश्व से माया को निकालने का, इस बेहद के बापूजी का क्विट वर्ल्ड का मूवमेंट है, निराकारी वर्ल्ड का बेहद का बापूजी है शिव, आज की मुरली में महावाक्य है। तो वैसी ही लगन हमें लग जाए संपूर्ण बनने की, स्वयं को परिवर्तन करने की। और इस ये 4 बातों में हमने आज के विषय की चर्चा की। अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा, किसी आश्रम में जब आश्रम का कालावधि पूर्ण हुई और वहां के जो छात्र थे गुरुकुल के अपने घर जाने लगे, तो उनको हमेशा से एक बात कही गई थी कि एक बात ऐसी है कि जो अभी तक एक परीक्षा तुम्हारी सबकी अब तक रही हुई है, हमेशा पूछते रहे विद्यार्थी कौन सी परीक्षा कौन सी परीक्षा कौन सी परीक्षा। गुरु ने कहा बाद में बताऊंगा बाद में, और बताया ही नहीं। परीक्षा पूर्ण हो गई, सारे एग्जाम पूरे हो गए, अभी छात्र अपने अपने घर जाने लगे। उसमें से तीन छात्र जो बहुत बुद्धिमान थे और अच्छे थे, वो जैसे जैसे जाने लगते हैं, बीच में रास्ते की उस पगडंडी पर बहुत सारे कांटे आ जाते हैं। तो पहले दो विद्यार्थी को एक तो छलांग मारकर जाता है, एक बाजू से निकल जाता है, पर जो तीसरा विद्यार्थी है वो कांटे बीनने लगता है, चुनने लगता है, एकत्र करने लगता है। दूसरे विद्यार्थी कहते हैं कि सांझ हुई जा रही है, रास्ता आगे जंगल है, अंधकार है, तुम इतना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो अपना। वो विद्यार्थी कहता है इसीलिए तो कर रहा हूं क्योंकि रात होने वाली है, मेरे बाद जो आने वाले हैं उन्हें तो ये पता ही नहीं चलेगा ना यहाँ कांटे हैं, उनके लिए मैं ये कांटे निकाल रहा हूं, आप चलो आगे, मैं थोड़े देर में ही आ जाऊंगा। और उतने में गुरु वो झाड़ियों के पास में होते वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये जो दो विद्यार्थी है इनकी शिक्षा अभी बाकी है, चलो वापिस गुरुकुल, और ये जो है ये जा सकता है। तो इस विश्वविद्यालय से केवल ज्ञान लेकर नहीं जाना है, परंतु वह भाव, वह प्रेम का भाव कि जैसे हमने पाया है, जो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम हमने अपने हृदय में भरा है, वही प्रेम जो मधुबन की जो सुगंध है, वही सुगंध हम विश्व में जाकर सेंटर पर, घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, सारे विश्व में फैलाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत प्यार से, बहुत भाव से, बहुत सुंदर तरीके से हमें डॉक्टर सचिन भाई ने बहुत सी बातें बताई। सबको आनंद आया ना? पर मैं इतना जरूर कहूंगी, सचिन भाई अब अपना परिचय तो सबको कराओ ठीक से, मुझे भी नहीं होगा तो मैं क्या बताऊं।
हमारा परिचय है कि हम इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं, हमें स्वयं भगवान ने चुना है, और हम बाबा का जो रूहानी हॉस्पिटल है उसमें पिछले 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहे। ओम शांति। वैसे तो हम परम धाम से आए थे 5000 वर्ष पहले। मदची मीच व्यालो आपुलिया पोटियालो, महाराष्ट्र के एक संत हैं तुकाराम, वो कहते हैं मदची मीच व्यालो आपुली या पोटिया लो, अपने ही गर्भ से मैं जन्म लिया हूं। हमारा लौकिक घर महाराष्ट्र अमरावती में है, परंतु वहां पर जो सेवा केंद्र है उसमें हम एक ही बार गए थे, हमने कभी कोई कोर्स फिर नहीं किया। हमारे जीवन में हमने अपनी पहली मुरली ही अव्यक्त बाप दादा से सुनी, हमारा जन्म अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि और बोल के द्वारा हुआ था 30 नवंबर 2003 में, और तब से हम ग्लोबल हॉस्पिटल आ गए उसके बाद, जन्म के बाद ही, और फिर बीच में थोड़ा बाहर गए, पूरी पढ़ाई कुछ पूरी की, और फिर 10-10-10 को फिर यहां आ गए, और तब से लेकर अब तक हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। तो चलिए अब 1 मिनट करें बाबा को याद। बहुत बहुत शुक्रिया।